ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद 31वां अध्याय। क्रम से ये श्लोक चलते आ रहा है ना। जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक संख्या 37। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन्वखण्डितधीपुमान् ऋषिं नारायणं ऋते योषिन्मय्येह मायया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। ब्रह्म द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। तात्पर्य। आदि जीव स्वयं ब्रह्मा हैं, जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि तथा अन्य और कश्यप मुनि तथा मनु ने विभिन्न देवताओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु इनमें से ऐसा कोई नहीं जो स्त्री रूपी माया के जादू से मोहित न होता हो। समग्र संसार में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं। इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री के प्रति कामासक्ति से कोई भी नहीं बच पाता। अतः माया की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि स्त्री है, जो बद्ध जीव को बंधन में रखती है। हरे कृष्णा। तो काफी समय के बाद यहाँ आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और जब भी हम आते हैं तो भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, ऐसे देखते हैं। आप सबकी सेवा, भक्ति, प्रचार आदि से अवश्य भगवान बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भेज रहे हैं आपके पास। तो ऐसे संग में आकर मैं अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। यहाँ विषय ये चल रहा है, कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं संसार के भीतर बद्ध जीवों के गतियों के विषय में। बद्ध जीव अर्थात वो जीव जो बंधन में है। तो सबसे मूल बंधन क्या है जिसके द्वारा जीव इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़ता है और भगवान के धाम में नहीं जा पाता है, उसका उल्लेख यहाँ पे है। पुरुष और स्त्री के बीच में जो एक आकर्षण है इस जगत में, ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है। बल्कि कामदेव का राज्य इस सृष्टि पर है और कामदेव के प्रभाव में आकर ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक जितने भी प्राणी हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे कपिल देव भगवान कह रहे हैं। तो ये आकर्षण जो है ये भौतिक स्तर पे होता है, ये शरीर के स्तर पे होता है, ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो शाश्वत होता है। यहाँ जो भी कुछ शरीर के ऊपर आधारित होता है वो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ है जिसका जो कभी भी भंग हो सकता है, किसी भी क्षण में समाप्त हो सकता है, और ऐसे होता है। तो क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, ये शरीर के से आधार के ऊपर आधारित जितने भी संबंध हैं वो भी क्षणभंगुर है, इसलिए वो सत्य नहीं माने जाते, मिथ्या है, एक स्वप्न के बराबर है। परंतु आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और आत्मा और भगवान के बीच में जो संबंध है प्रेम का वो शाश्वत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि तीन ही सत्य हैं, भगवान, जीव और भक्ति। क्योंकि भक्ति भगवान और जीव के बीच में वास्तविक संबंध है, तो ये सत्य है। तो जब हम सत मार्ग में चलते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत कर्म करते हैं, तो ये सत का मतलब है भक्ति, जो आत्मा और परमात्मा के संबंध के बीच में असंबंध के ऊपर आधारित है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, कि यहां इस भौतिक जगत में एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। जबकि एक साधारण वृक्ष के बारे में हम ये जानते हैं कि जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं ऊपर होती हैं, परंतु ये कौन सा अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। ये भौतिक सृष्टि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं एक प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। आध्यात्मिक जगत का एक विकृत रूप है। दूसरे शब्दों में, जो भी यहां पे भौतिक जगत में दिखाई पड़ता है वो आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। भगवान के धाम में शुद्ध प्रेम है, और वो प्रेम यहां प्रकट होता है काम के रूप में। तो ये जो भी अनर्थ यहां दिखाई पड़ते हैं भौतिक जगत में, उनका मूल शुद्ध आध्यात्मिक रूप आध्यात्मिक जगत में दिखाई पड़ता है। अच्छा, आप ये बताइए यहां भौतिक जगत में अनर्थ कौन से हैं? पहला एक कोई नाम दीजिए, काम। तो काम यहां है और ये एक प्रतिबिंब है, इसका मतलब है काम आध्यात्मिक जगत में भी होना चाहिए। जब एक वृक्ष है जो एक सरोवर के तट पर स्थित है, और उस वृक्ष का प्रतिबिंब हम जब उस जल में देख रहे हैं, तो यदि वृक्ष के ऊपर आम है तो वो आम नदी में या पानी में भी दिखाई पड़ेगा। पेड़ के ऊपर भी आम होना चाहिए। तो उसी तरह से ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में हम काम देखते हैं, तो फिर ये काम आध्यात्मिक जगत में भी होना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक जगत में जिस रूप में ये काम उपस्थित है वो ऐसे नहीं है जैसे कि वो यहाँ है। तो वहां उस इसी काम को क्या कहते हैं? प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम कृष्ण प्रेम नाम। ये अंतर है। जब हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसे काम कहते हैं, और और जब हम श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि की परवाह न करते हुए, तो फिर वो प्रेम कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के असंख्य अनगिनत प्रेमी भक्त हैं, जिनकी एकमात्र इच्छा है कि हम श्री कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें। बस उनकी एक ही धारणा है और कोई भी विचार नहीं है। निस्वार्थ ढंग से भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा, यह आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है। यह कहानी आपने तो कई बार सुनी होगी, नारद मुनि और गोपियों की, जब श्री कृष्ण को सरदर्द हुआ था और नारद जी ने पूछा कि क्या औषधि आपके लिए हम ला सकते हैं। उन्होंने कहा, सारे वैद्यों के पास मैं गया हूं, कोई इलाज नहीं कर पा रहा है, परंतु मैं जानता हूं कि मेरे सरदर्द के लिए उपाय क्या है। उपाय है मेरे भक्तों के चरणों की धूली। तो नारद मुनि, आपके चरणों की धूली दे दो मुझे, ताकि मेरे सर के ऊपर मैं डालूं और मेरा सरदर्द दूर हो जाएगा। नारद मुनि ने सोचा का, अरे ये कैसे, हैरान हो गए नारद मुनि, मेरे चरणों की धूली आपके सर के ऊपर ये प्रभु कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो फिर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि जाओ वृंदावन के गोपियों से पूछो। तो नारद जी चले गए वृंदावन और गोपियों से पूछा, तो गोपियों को जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण को सरदर्द है और यह सरदर्द का उपाय केवल भक्तों की चरण की धूली है, तो तुरंत उन्होंने नारद जी से कहा कि जितना चाहिए उतना रज जो है ले लो हमारे चरणों से, हमारे पास बाल्टियां भी हैं, ले लो, भर भर के जितना चाहे हम देने के लिए तैयार हैं। तो नारद जी फिर से हैरान हो गए कि अरे क्या आप लोग नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है और हमारे चरण धूली हम कृष्ण के सर के ऊपर रखेंगे तो ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा, हम तो नरक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि यदि श्री कृष्ण को सरदर्द से राहत दिलाने के लिए, एक क्षण के लिए भी राहत दिलाने के लिए हमें सदैव नरक में वास करना पड़ा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। तब नारद जी समझ गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास में क्यों भेजा था, और वृंदावन की भक्ति और प्रेमा भक्ति कितनी विशेष है। दूसरे शब्दों में यह है प्रेम के लक्षण। आध्यात्मिक जगत में लेश मात्र भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए तो वो प्रेम कहलाता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में निस्वार्थ प्रेम पाया जाना बहुत बहुत मुश्किल है, ये बहुत दुर्लभ है। और शुद्ध प्रेम, इससे सबसे निकट जो कोई यदि यहां झलक दिखाई पड़ती है, एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं, वो एक मां का प्रेम अपने छोटे बच्चे में है, बड़े होने के बाद नहीं, छोटी अवस्था में। जब मां का प्रेम छोटे बच्चे के प्रति कैसे निस्वार्थ होता है, वो एक लेश मात्र झलक दिखाई पड़ती है, फिर भी एक स्वार्थ है, क्योंकि भावना रहती है कि आगे चल के बच्चा हमारी सेवा करे, थोड़ा तो कुछ रहता है, ये हमारा बच्चा आगे चल के अच्छा इंजीनियर बने, विदेश जाए, ताकि हमारा नाम भी रोशन हो जाएगा, सब लोग आके पूछेंगे आपका बेटा अमेरिका में रहता है, हाँ अच्छा। तो खैर, इस दुनिया में सब जगह स्वार्थ है, इसलिए इसे काम कहते हैं। तो ये काम, ये एक विकृत रूप है उस आदि प्रेम का,
उस प्रेम का, उसे आदि काम कहते हैं। उस प्रेम को आदि काम इसलिए कहते हैं कि उस शुद्ध प्रेम से यहां ये काम उत्पन्न होता है। तो इसे केवल हमें पवित्र करना है श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करके, फिर हम उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। और कौन से हमारे अनर्थ हैं यहां पर? क्रोध। तो यहां क्रोध है, ये प्रतिबिंब है। तो वास्तविक जगत में, आध्यात्मिक जगत में क्या है क्रोध का शुद्ध रूप? क्या है? जैसे काम का शुद्ध रूप प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए पूर्णतया प्रयास, तो क्रोध का शुद्ध रूप क्या है? दया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। किसने कहा? हाँ, को एक महाप्रसाद देना चाहिए। क्रोध का शुद्ध रूप है दया, करुणा। हम क्रोधित कब हो जाते हैं? जब हम करुणामयी होना भूल जाते हैं। गुस्सा आ जाता है, हम करुणा नहीं करते। जब गुस्सा करते हैं तो किसी के ऊपर करुणा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा गुस्सा अहंकार पर आधारित होता है। भगवान भी क्रोधित हो जाते हैं, परंतु उनका क्रोध कृपा पर, प्रेम पर आधारित होता है। तो इसलिए करुणा ये क्रोध का शुद्ध रूप है। तो यदि हम क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? करुणा की भावना का विकास करने का प्रयास करना चाहिए हमारे जीवन में, हमारी चेतना में। जैसे काम से हमें मुक्त होना है तो श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त करते करते हमारे अंदर काम कम होती जाएगी। उसी तरह से क्रोध हमें यदि कम करना है तो करुणा की भावना सबके प्रति दिखानी चाहिए। और सर्वोच्च करुणा क्या है? कृष्ण भावनामृत को प्रदान करना। परंतु कृष्ण भावनामृत को प्रदान करते करते भी साधारण दैनिक जीवन की जो करुणा, तो लोभ यहां है इस भौतिक जगत में तो आध्यात्मिक जगत में भी है। तो लोभ का शुद्ध रूप, आध्यात्मिक रूप क्या है? हाँ, संतुष्टि। संतुष्टि। और ऐसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम अभी भौतिक चीज की बात कर रहे हैं, तो यहां लोभ जब होता है, लोभ का मतलब क्या है? ये दिल मांगे मोर, है ना? और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है, अब जो है सो है। कई बार जब लोग कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, परंतु कितना हमारे लिए उचित है, कितना पर्याप्त है? तो इसके उत्तर में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जितना आपके भक्ति के लिए पोषक है और आवश्यक है उतना पर्याप्त है। केवल आपके शरीर को बनाए रखने के लिए नहीं, दो दृष्टि से ये बातें देखी जा सकती हैं। हमें केवल इतना स्वीकार करना है, जीवन यापन इस तरह से करना है कि हम शरीर को स्वस्थ अवस्था में बनाए रख सकें। ये एक दृष्टिकोण है, ये साधारण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। परंतु विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण अर्थात भक्ति का दृष्टिकोण ये है कि हमारे भक्ति के लिए जितना आवश्यक है हम उतना करें। यदि कोई बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो, शारीरिक श्रम उनका हो, तो उनको अधिक प्रसाद लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। परंतु कोई इस तरह से ज्यादा परिश्रम नहीं कर रहे हैं और उनकी सेवा कम है या एक जगह में बैठे हुए हैं तो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए क्योंकि आवश्यक नहीं है। तो उसी तरह से किसी को कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए, यदि सेवा के लिए आवश्यक हो तो लीजिए और सेवा के लिए आवश्यक नहीं हो तो फिर मत लीजिए। तो इस तरह से हर चीज यहां अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें देखनी चाहिए, हमें संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्टो सततम योगी, श्री कृष्ण भगवद गीता में जब योगी की परिभाषा देते हैं तो कहते हैं कि सर्वप्रथम योगी को संतुष्ट होना चाहिए अपने इस समय जो परिस्थिति है उसमें, जहां तक भौतिक चीजों का प्रश्न आता है। तो क्रोध का शुद्ध रूप है संतुष्टि, परंतु हां उसी भौतिक लोभ को हम आध्यात्मिक रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, उसको आध्यात्मिक लोभ भी कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि आपको यह कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति के रस को आपको पाना है, तो क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, जल्दी से इसको आप खरीद लीजिए, जहां से भी उपलब्ध है वो खरीद लीजिए। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। तो इसका मूल्य क्या है खरीदने के लिए, लौल्यम, लौल्यम अर्थात लालसा, इसको श्रील रूप गोस्वामी समुत्कंठा भी कहते हैं। उत्कंठा अर्थात वो आतुरता, और सम अर्थात सम्यक उत्कंठा, संपूर्ण उत्कंठा या आतुरता, तीव्र अखंडित आतुरता भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जिस तरह से संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर तीव्र इच्छा रहती है, उसी तीव्र तीव्रता का को हम यदि केंद्रित करें भगवान श्री कृष्ण में और वो समुत्कंठा उत्पन्न करने का प्रयास करें, वो लालसा जागृत करें, तो फिर ये भी लोभ का सही प्रयोग होगा। और क्रोधित, जहां तक क्रोध की बात की है, प्रभुपाद जी उपदेशामृत में तात्पर्य में बताते हैं कि हालांकि क्रोध रजगुण से उत्पन्न होता है, जैसे कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं काम क्रोधस लोभ, काम क्रोध लोभ, ये तीन रजगुण से उत्पन्न होते हैं, रजगुण समुद्भव है। फिर भी हनुमान, अर्जुन और स्वयं भगवान ने भी क्रोध का उपयोग किया, जब कोई भगवान के विरुद्ध या भक्तों के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उनका दमन करने के लिए, उनको दंड देने के लिए कभी कभी क्रोध का उपयोग करना पड़ता है। हनुमान ने रावण को दंड दिया क्रोध के द्वारा, अर्जुन ने अपने क्रोध के द्वारा कुरुक्षेत्र में अनेक विपक्षी दल के सैनिकों को दंड दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मधई और जगाई को दंडित करना चाहा क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया था। तो ऐसे इन चीजों का प्रयोग संसार में भी किया जा सकता है, काम का भी प्रयोग हो सकता है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जो काम विवाहित जीवन में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म अविरुद्ध है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ऐसा काम मैं हूं भगवान कहते हैं। अर्थात संतान की उत्पत्ति के लिए जब काम वासना का काम का प्रयोग किया जाता है तो वो आध्यात्मिक माना जाता है, धार्मिक माना जाता है, ऐसे संतान की उत्पत्ति की प्रयास में जो कि आगे चल के कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़कर शुद्ध भक्त बन जाए। तो काम, क्रोध, लोभ और कौन सा है अनर्थ, मोह। तो मोह का क्या मतलब है? जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, जब असत्य को सत्य मान बैठते हैं, तो यहां मोह है तो वहां भी मोह होगा। तो वहां जो मोह है या इस मोह का, संसार के मोह का वास्तविक शुद्ध रूप क्या है? ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, विद्या। तो वहां सब ज्ञान के स्तर पर स्थित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां पर जो भी कार्य सारे भक्त करते हैं वो आत्मा के स्तर पे होते हैं, भौतिक जगत के स्तर पे नहीं होते हैं। हालांकि वो इस तरह से ज्ञान की बात नहीं करते हैं जहां जैसे हम लोग करते हैं। वहां तो वो ज्ञान की परिपूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर ही चुके हैं। और ज्ञान की परिपूर्णता क्या है? कृष्ण प्रेम और कृष्ण की सेवा। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ज्ञान की परिपूर्णता है कि हम भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण के शरण में जाएं और उनकी हम सेवा करें, और सेवा करते करते हृदय में हम शुद्ध प्रेम जागृत कर लें। तो वो तो प्रेम की अवस्था में स्थित हैं ही, 24 घंटे भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। तो वो ज्ञान की परिपूर्णता है। और यहां और उस जगत में भी मोह हो जाता है, परंतु वो मोह आध्यात्मिक जगत का मोह है, योग माया का मोह है। एक बार जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के साथ बैठी थी, तो किसी एक भक्त ने आके कहा कि ये मधु को हटाओ, मधु, क्योंकि एक भंवरा आके हैरान कर रहा था दोनों। तो जब राधा रानी ने सुना मधु को हटाओ, वो सोचा कि मधुसूदन की बात कर रहे हैं। तो हालांकि कृष्ण के साथ में बैठे थे, फिर भी वो सोचने कि मधु का कृष्ण कहाँ है, कृष्ण चले गए, चले गए। तो वो उस मोह में और हमारे मोह में बहुत अंतर है। तो भगवान की लीलाओं में बहुत सारे मोह में डालने वाले विषय होते हैं, परंतु वो योग माया के अंतर्गत होते हैं। और हमारा मोह महामाया के अंतर्गत है। जैसे माता यशोदा के चित्त में भी एक मोह है। क्या मोह है? किस तरह का भ्रम है कि कृष्ण मेरे पुत्र है, ये उनका मोह है। वास्तव में कृष्ण ही माता यशोदा के और सभी के पिता हैं। तत्व के दृष्टि से देखा जाए, श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। मैं सभी का पिता हूं, सभी के माता हूं, मैं सब कुछ हूं सभी के लिए। तो तत्त्वात्विक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से सभी उत्पन्न होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ही सभी के माता पिता आदि हैं। तो अब माता यशोदा सोच रही है कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, और जितना भी कोई प्रयास करे माता को, यशोदा को समझाने के लिए कि अरे आपका बेटा भगवान है, वो नहीं मानेंगे, तैयार नहीं होंगी मानने के लिए। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। नंद महाराज भी कभी ऐसे तो कभी वैसे, ब्रजवासी भी कभी ऐसे तो कभी वैसे। जब श्री कृष्ण छोटे बच्चे की तरह आके कोई हरकत करते हैं, शरारत करते हैं, तो वात्सल्य स्नेह से ब्रजवासियों का हृदय भर जाता है। और फिर बादलों की गर्जना सुनकर श्री कृष्ण घबरा जाते हैं, माता यशोदा के दंड से घबराते हैं। और जब माता यशोदा उनको रस्सी से बांधने जाती हैं, तो उस समय भी कृष्ण डर जाते हैं। तो ये सारा मोह जो है, जो एक वातावरण जो देखते हैं ब्रजवासी गण की, ये कैसे भगवान हो सकता है। और दूसरी ओर देखते हैं कि श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण कर रहे हैं और उनका मोह क्या है, अरे श्री कृष्ण थोड़ी धारण कर रहे हैं, देखो हम सब गोपगण अभी अपने लाठी लेकर गोवर्धन को धारण कर रहे हैं, वो अपने मोह में है। परंतु वो योग माया का मोह है, जिस मोह में आके उनकी भक्ति या उनका प्रेम बढ़ जाता है। तो योग माया का मोह कृष्ण प्रेम के लिए पौष्टिक होता है। मोह माया का जो महामाया का जो मोह है वो कृष्ण भक्ति के लिए हानिकारक होता है। हम कृष्ण को भूल जाते हैं मोह महामाया में आकर, परंतु योग माया में आकर हमारा कृष्ण प्रेम बढ़ जाता है। अभी भक्तों की बात तो दूर रही, स्वयं श्री कृष्ण भी मोह में आ जाते हैं। आप बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहे हैं, कैसे हो सकता है। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण मोह में आ जाते हैं। अघासुर, क्या हुआ अघासुर? जब सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे थे तो एक क्षण के लिए कृष्ण को भी लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, परंतु बाद में उनको पता चला। परंतु और एक मोह की बात, दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण कैसे मोहित हुए? दामोदर लीला में माखन, घबरा गए। अच्छा, अभी आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, श्री कृष्ण वास्तव में घबरा गए थे या घबराने की नकल कर रहे थे, नाटक कर रहे थे? वास्तव में घबरा गए थे। वे कैसे भगवान हो गए? अरे भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद, कि नंद नंदन का स्मरण करके अभय हो जाओगे। अभी हमारे श्रद्धा पे ठोस पहुंचेगा ये जान के कि स्वयं कृष्ण डर जाते हैं तो हमें कैसे डर से मुक्त करेंगे, ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है ना। परंतु ये भगवान की लीला शक्ति का खेल है। श्री कृष्ण इस लीला का आस्वादन करना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत भी मोह से भरा हुआ है, जैसे ये भौतिक जगत मोह से भरा हुआ है। परंतु वहां के मोह में और यहां के मोह में बहुत बड़ा अंतर है। वो मोह सत्य पे आधारित है, वो रसमय है, परंतु यहां का मोह अज्ञान पर आधारित है और रसहीन है, विकृत रस से पूर्ण है। तो भौतिक मोह से, महामाया के मोह से योग माया के मोह में अपने आप को स्थानांतरित करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। कब वो दिन आएगा जब हम भी श्री कृष्ण को भगवान न मानकर उनको मित्र मानेंगे, पुत्र मानेंगे, प्रेमी मानेंगे, कृत्रिम रूप से हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। कई बार खास करके वृंदावन में ये सब चर्चाएं होती हैं, सिद्ध प्रणाली, स्वरूप सिद्धि। कई प्राकृत सहज लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि आप कौन हैं आध्यात्मिक जगत में, पहले ही मुलाकात में उनको कह देते हैं आप वृंदावन में एक मोर हो, तो वो मोर की तरह वो उड़ता रहेगा। तो इसको सहजीय कहते हैं क्योंकि भक्ति को बहुत सहज लेते हैं। तीन गुणों से, भौतिक गुणों से परे न होने के बाद भी वो ऐसे बात करते हैं कि मानो वो तीन गुणों के परे आ चुके हैं। परंतु ये अवस्था तो बहुत ऊंची अवस्था होती है, कृष्ण प्रेम पर आधारित अवस्था होती है। तो इसलिए ये जो भाव है कि हमारा स्थान क्या है, ये एक बहुत ऊंचे अवस्था का स्थान, इसके बारे में हमें अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना जानना चाहिए कि अभी हम केवल गुरुदास हैं, बस गुरु के आदेश के अनुसार हमें भक्ति करते रहनी चाहिए और धीरे 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 से महामाया के प्रभाव से मुक्त होकर हम योग माया के प्रभाव में अपने आप को स्थित कर पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, फिर मद। मद का क्या मतलब है? अहंकार, अहंकार। मद, मत्तः, ये वास्तव में मद शब्द कहां उपयोग किया जाता है? जब मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है तो कहते वो व्यक्ति उन्मत्त हो गया है। मत्तः, प्रमत्तः, उन्मत्तः। तो ये जो मत्तः ये शब्द है, इसका मतलब है नशे की अवस्था में और एक तरह का पागलपन, नशा। तो ये क्यों आ जाता है? क्योंकि हम इतने अज्ञान में पड़ जाते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो मद का प्रयोग अहंकार के लिए इसलिए किया जाता है कि ये अहंकार, ये घमंड की जो भावना होती है, ये भी एक प्रकार का पागलपन है, ये भी एक प्रकार की का नशा है। नशे में आकर व्यक्ति क्या कहता है? अनाप शनाप बड़बड़ाता है ना, कुछ भी कहता है। कोई कहता है मैं राजा शिवाजी हूं, कोई कहता है मैं राजा नेपोलियन हूं, तो कुछ भी कह देता है व्यक्ति। तो ऐसे ही एक अहंकार से युक्त जो के अहंकार ग्रस्त व्यक्ति कुछ भी कहता है, कुछ भी सोचता है, मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मैं कितना प्रभावशाली आदमी हूं, मेरे अंदर ऐसे गुण हैं, वैसे गुण हैं, तो वो अपनी ही दुनिया में रहता है। इसलिए घमंड, अहंकार, ये बहुत ही खतरनाक वस्तु है इस जीवन में। भले किसी ने काम को, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हो, भले उसने लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हो, भले उसने धन आदि के प्राप्ति के विषय में भी कोई इच्छा उसके हृदय में नहीं है, फिर भी एक घमंड रहता है कि मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए समाज में, समाज में मेरा गुणगान होना चाहिए, लाभ, प्रतिष्ठा, मैं बहुत एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। तो ये बहुत सूक्ष्म है परंतु बहुत खतरनाक है। तो घमंड या अहंकार यहां प्रतिबिंब रूप में है और वहां भी है। तो घमंड का वास्तविक रूप आध्यात्मिक जगत में क्या है? विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो वहां नम्रता है, सभी नम्र हैं। तो यह इस भौतिक जगत में हमें विनम्रता के अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु हां, कृष्ण लीला में भी हमें घमंड दिखाई पड़ता है। ये जो भी अनर्थ है ना, जितने भी अनर्थों की बातें हम कर रहे हैं, उनको हम आध्यात्मिक जगत में भी अपने शुद्ध रूप में देख सकते हैं, जैसे हैं वैसे, और उनके मूल रूप में भी। अब कुसुम सरोवर जो गोवर्धन के पास में है, वहां एक बहुत सुंदर बगीचा है और उस बगीचे में बहुत फूल होते हैं। हम वर्तमान क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि व्रज लीला, कृष्ण लीला ये शाश्वत है, अभी भी चल रही है। तो गोपियां वहां जाती हैं फूल तोड़ने के लिए, फूल अपने सूर्य देव की पूजा में इस्तेमाल करने के लिए। फिर वह सूर्य कुंड जाती हैं, सूर्य देव की उपासना करती हैं, और श्री कृष्ण अपने आप को गोवर्धन के स्वामी मानते हैं। तो वो आके उनको रोकते हैं, गोपियों को, यही तुम कौन हो, तो यहाँ आने वाले, ये तो मेरी जगह है, मैं यहाँ का स्वामी हूं, तो मेरे अनुमति के बिना तुम यहाँ कैसे आए? तो श्री कृष्ण अपने घमंड को प्रदर्शित करते हैं और गोपियां कहती है, अरे तुम कौन से मालिक हो यहाँ के, हम तो असली मालिक हैं और तुम्हारे जो गाय हैं देखो यहाँ के सारे फूल खा जाते हैं, ये बगीचे को नष्ट करते हैं, कैसे स्वामी हो तुम। वास्तव में हम असली यहाँ के स्वामिनियाँ हैं। तो ऐसे दोनों अपना अपना घमंड प्रदर्शित करते हैं, परंतु ये घमंड ये संसार का घमंड नहीं है, ये कृष्ण लीला में जो घमंड दिखाई पड़ता है वो शुद्ध है, बहुत मीठा है, मधुर है, रसमय है। और साथ साथ एक तात्विक रूप से देखा जाए तो एक विनम्रता है। तो घमंड से दूर होने के लिए, मद से दूर होने के लिए हमें विनम्रता का अनुशीलन करना चाहिए। तो ये पांचवा अनर्थ हुआ। और छठा मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब क्या है? ईर्षा। ईर्षा का मतलब है दूसरों से जलना। एक बार हम बता रहे थे एक प्रवचन में कि आप देखेंगे भारत में सड़कों पे जो राजमार्गों में बड़े बड़े ट्रक चलते हैं ना, उनके पीछे तरह तरह की चीजें लिखी हुई होती है ना, मेरा भारत महान, या बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे सब लिखा हुआ होता है। तो एक ट्रक के पीछे हमने देखा, बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी, जलना है तो दीपक की तरह जलो, है ना सुंदर बात। दूसरे शब्दों में जलना है तो दूसरों के प्रति नहीं जलना, कि अरे उसके पास इतना पैसा क्यों है, अरे उसको ही महाप्रसाद मिला मुझे क्यों नहीं मिला, और उसको उसका नाम अखबार में आया मेरा नाम अखबार में नहीं आया। तो दूसरों से इस तरह जलने के बजाय क्यों ना हम दीपक की तरह जलें। जब दीपक जलता है तो क्या करता है? अंधकार को नष्ट करता है। तो हमें भी दीपक की तरह जलना है, अर्थात अज्ञान के अंधकार को हमें नष्ट करना है ज्ञान के प्रचार के द्वारा। साथ साथ में जब रोशनी आ जाती है तो अंधकार से जो भय उत्पन्न होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो हमें भी निर्भयता फैलानी चाहिए जो कि कृष्ण भक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऐसे सारे दुनिया को हम राहत दिला सकते हैं, उनको प्रेम करुणा के द्वारा उनको जीवन उनके जीवन में वास्तविक सुख प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से हम दीपक की तरह में जलना चाहिए, ना कि हृदय में किसी के प्रति घृणा द्वेष ईर्षा आदि हम जागृत करें। तो अभी आध्यात्मिक जगत में इसका मूल शुद्ध रूप कौन सा है? एप्रिसिएशन, ठीक है, अन्यों की प्रशंसा करना। किस तरह की प्रशंसा करना? मैं उसकी प्रशंसा करूंगा ताकि वो भी मेरी प्रशंसा करे, ऐसी प्रशंसा नहीं। कैसी प्रशंसा? हृदय पूर्वक। हृदय पूर्वक अन्यों के अच्छे गुणों को देखना, उनके दुर्गुणों को नहीं देखना। अच्छे गुणों को देखकर फिर उनकी प्रशंसा करना। इस तरह से आध्यात्मिक जगत में और आध्यात्मिक जीवन में, वास्तविक भक्ति जीवन में, सभी लोग, सारे भक्त जो है एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, परंतु झूठी झूठी प्रशंसा नहीं, या कोई स्वार्थ से प्रेरित प्रशंसा नहीं कि मैं इसकी प्रशंसा करूंगा ताकि इनसे मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना से नहीं, शुद्ध भावना से किसी के अच्छे गुण देखकर उनकी प्रशंसा करना। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। कई बार कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु भी अपने भक्तों की प्रशंसा ऐसे किया करते थे कि मानो उनके पांच मुख हों। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो हमें भी वैष्णवों के समाज में विशेष रूप से दुर्गुण न देखकर अच्छे गुण देखते हुए भक्तों के प्रशंसा करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। और यदि हमें दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो दोषों को ठीक करने के लिए भी जो एक वैष्णव पद्धति है उसको स्वीकार करना चाहिए। जो सही व्यक्ति हैं जो उस भूल को ठीक कर सके, जो अधिकारी व्यक्ति हैं, उन तक बात सही ढंग से, सही भावना से पहुंचाकर फिर वो भूल हम ठीक करवा सकते हैं। और आध्यात्मिक जगत में भी क्या ईर्ष्या है? कैसे है? प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिस दृष्टि से काम भी है, क्रोध भी है। चंद्रावली और राधा रानी के दो दल हैं, और चंद्रावली के दल में वो श्री कृष्ण के पक्ष, वो श्री कृष्ण को अपने पक्ष में ले आना चाहते हैं। श्रीमती राधा रानी के दल में वो श्री कृष्ण को उनके पक्ष में ले जाना चाहते हैं। तो वैसे तो ये बहनें हैं, श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली, उनके पिता जो हैं वो दोनों भाई हैं, वृषभानु और चंद्रभानु। तो दोनों के बीच में एक तरह की प्रतियोगिता रहती है। तो श्रीमती राधा रानी के दल में जो गोपियां हैं वो देखेंगे कि श्री कृष्ण वहां नहीं जाए। तो ये लीलाएं होती है। और नारद जी एक बार, नारद जी तो आप जानते हैं, उनको उनका प्रयोग कभी ऐसे होता है। नारद जी ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि जाइए वहां पे, राधा रानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। नारद जी को पता था वहां पे अकेली ललिता देवी थी, राधा रानी नहीं थी। फिर जाके राधा रानी से कहा, देखो श्री कृष्ण अलग ललिता देवी के साथ बैठे। तो राधा रानी को गुस्सा आया, ऐसे कैसे हो गया। तो ये लीलाएं हैं। वास्तव में ललिता देवी की इच्छा क्या है कि केवल राधा कृष्ण को इकट्ठे लाए हैं। सारे गोपियों की भावना ये रहती है कि कैसे राधा कृष्ण की सेवा को हम बढ़ाएं, और राधा रानी चाहती है कि कैसे गोपियों को श्री कृष्ण से मिलाएं। ये प्रतियोगिता होती है। तो ये ईर्ष्या, तथा कथित ईर्ष्या जो दिखाई देती है वो केवल दिखने के लिए है। मूल रूप से ये शुद्ध प्रेम पर आधारित है, ये बिल्कुल निष्कलंक है। तो खैर, इस तरह से ये भौतिक जगत प्रतिबिंब रूप है। तो यहां जितने भी कलमश, जितने भी दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं वो हम कृष्ण भक्ति के द्वारा दूर कर सकते हैं। और जो विकृत संबंध यहां दुनिया में दिखाई पड़ते हैं उनके भी हम शुद्ध संबंध बना सकते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। वैसे तो और बड़ा विषय है, लेकिन अभी समय बीत चुका है, थोड़ा समय हम प्रश्नों के लिए भी रखते हैं। तो कथा विराम यहीं पे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो क्या आपके कोई प्रश्न है? हाँ,
हरे कृष्ण महाराज, बहुत सुंदर प्रवचन के लिए धन्यवाद। आपने बताया कि हमें क्रोध मुक्त होने के लिए दया व करुणा की भावना विकसित करनी चाहिए, किंतु सामान्यतः जब क्रोध आता है तो वो इतना आवेग में आता है कि उस सोचने का समय नहीं रहता। तो हम व्यावहारिक दृष्टि से कैसे क्रोध मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं, विशेषकर भक्तों के बीच में, क्योंकि भक्तों के प्रति क्रोध का प्रयोग करना बहुत घातक होता है।
भक्तों के बीच में भी करुणा दिखाया जा सकता है ना। तो जब गुस्सा आता है तो हमें याद रखना चाहिए कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए, अपने आध्यात्मिक बुद्धि से अपने आप को समझाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बहुत सुंदर बात बताते हैं, जब क्रोध बहुत आता है ना, तो नरसिंह देव किस तरह से क्रोध करते हैं हिरण्यकश्यप का वध करते समय, वो याद करना, अपना क्रोध भूल जाओगे। और जब काम उत्पन्न होता है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की गोपियों के साथ की जो लीला है उनका स्मरण करना, अपने काम वासना भूल जाओगे। तो ये एक अच्छी बात है, जब क्रोध अगली बार जब आएगा तो नरसिंह देव भगवान को याद करना, अपने गुस्से को भूल जाओगे। अच्छा, ये प्रश्न ऐसा है कि कभी कभी हमारे मन में एक हीन भावना आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर इतने अनर्थ हैं और ऐसी कोई संभावना नहीं लगती कि हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या कोई एक उपाय है जो झटके से ये सारे ठीक हो जाएं? एक झटके वाला उपाय कोई है? है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक झटके वाला है, नहीं तो माया के झटके आएंगे। फिर माया के झटके जब आएंगे तब बहुत दर्ददायक होगा। इसलिए अपनी साधना आदि को अच्छी तरह से करके अवश्य इन अनर्थों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे, परंतु हमें धीरज रखना चाहिए। उत्साह निश्चयात धैर्यात, धैर्य अर्थात धीरज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने बस 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हमने जप करना शुरू किया और अभी भी जो है अष्ट सात्विक विकार नहीं हो रहे हैं, शरीर में कंपन नहीं हो रहा है और रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं इत्यादि। समय लगता है, तो हमें धीरज रखना चाहिए। और कोई प्रश्न? हाँ,
मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सेल्फिशनेस, सो दैट्स व्हाई इट इज लाइक
फुल ऑफ सेल्फिशनेस।
सो व्हेन देयर इज सेल्फलेस एनवायरनमेंट, इट गिव्स द सिम्पटम्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्चुअली अमंग द इवन सम क्लोज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बट समटाइम्स वी परसीव, लाइक यू सेड वन एग्जांपल ऑफ एप्रिसिएशन विथ फ्रूटिव मेंटेलिटी। So when we kind of, because of our ignorance or reality we don't know, but we perceive such things from others of fruitive mentality, of appreciation or selfishness in others, which may be our perception, we don't know about other persons, but when we perceive we feel a little pain in heart. So how do we go ahead in our practice of bhakti among devotees whom we don't want to offend in whole life, even in mind? So how do we deal properly with such situation and go ahead?
To kya prashna ye hai ki yadi koi vyakti hamari prashansa, koi bhakt hamari prashansa karte hain, parantu hame lagta hai ki unki prashansa ke piche koi swarth hai, to hame kya karna chahiye? Ye prashna hai. फ्रुएटिव डीलिंग्स, हाँ, हमें लगता है कि इनके कार्यों में, बर्ताव में कोई स्वार्थ है, तो हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, क्यों हमें दूसरों के बारे में ऐसे सोचने की आवश्यकता है, और यदि है भी तो उनके और कृष्ण के बीच में है, कृष्ण उनको शुद्ध कर देंगे, है भी तो हमें अपनी ओर से जो साधारण प्रेम का व्यवहार है वो बनाए रखना चाहिए। और यदि वो स्वार्थ किसी इस रूप में प्रकट हो जाता है कि वो अन्यों के लिए हानिकारक हो, तो फिर हमारे अधिकारी भक्तों से हम कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं, परंतु ऐसे संभावना बहुत कम होती है। तो ऐसे संशय कभी कभी करने की आवश्यकता नहीं है, और हमें यह जानना चाहिए कि वैसे भी जैसे प्रभुपाद जी बताया करते थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ एक हॉस्पिटल की तरह है, जिसमें हम सब आए हैं अपने बीमारी को ठीक करने के लिए। हम ये नहीं अपेक्षा कर सकते कि सभी लोग यहाँ जो हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो शत प्रतिशत बिल्कुल परिपूर्ण रहेंगे, सही रहेंगे। दोष तो रहेंगे ही, हर एक में रहेंगे, और जैसे हम अन्यों में दोष देख रहे हैं, निश्चित ही हमारे अंदर भी दोष हैं, और उन दोषों को अन्य लोग देख भी रहे होंगे। इसलिए एक साथ हमें मिलकर शुद्धता की ओर और कृष्ण प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है।
सपोज टू हमें ये महसूस करना है कि संसार दावा नदा मेरे लोग को तरणा करुण घना घन, बिकॉज आपने जो बताया कि ये जो वृक्ष है और दमोदर शाखा की, हमको वो पानी में जो फल दिखते हैं, जो भी आनंद दिखता है, वो इट इज़ टेम्पररी एंड ऑन, तो किस तरह से महसूस करें, बिकॉज जन्मा ईश्वर अशुतोष भी वो भी बताया गया कि ऐसी सारी चीज़ें आ गई है, सो मेनी फैसिलिटीज दैट डजेंट मेक अस, मतलब हमको डजेंट मेक अस फील दैट नो कि संसार दावानल है ये जगत, और हमको उस तीव्रता से फिर शरण लेनी चाहिए, और ये सारे जो अनर्थ है इनसे डर लगने रहा है, ये सारे नो अपराध को बढ़ावा देने वाले सब ये अनर्थ हैं, जो द पॉजिटिव फियर आई मीन, और ऐसा बोलना कि शरण लेने की जो प्रवृत्तियों के स्तर से हमारे अंदर आ जाए, जस्ट बिकॉज थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट गिविंग अस दैट थिंग, सो ओके।
इसलिए तो हम बार बार सुनते हैं संसार दावा नलली ढलोक, बार बार सुनने से साक्षात्कार होता है और दुनिया का अनुभव भी ऐसे हो जाता है, तो श्रवण बार बार करना ये बहुत आवश्यक है। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि हम हर बार कोई नई बात सुनना चाहते हैं प्रवचन में, इसलिए कब समस्याएं होती हैं, तो समस्याओं के लिए समाधान भी हम नए नए चाहते हैं, नए नए उपाय चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि समस्याएं भी वही पुरानी हैं और उपाय भी वही है, हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए उनकी उनका सूत्र एक ही था, हरे कृष्ण जपो और सुखी रहो। तो बार बार श्रवण करने से संसार का सही रूप हम जान पाएंगे और श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। हम एक चीज कहना चाहते हैं कि यूथ फोरम की ओर से कि हम आपसे बहुत आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें राधे श्याम प्रभु दिए। मैंने नहीं दिया। ये गलती नहीं करना, किसी न किसी तरह से गलती से हम वहां उस जगह उस समय हम हो गए, उपस्थित हो गए, बस इतना ही आना था राधे श्याम प्रभु को अपने उनके कृष्ण के साथ संबंध के बीच में आके ये सब यहाँ बहुत सुंदर सेवा करनी थी, और कृष्ण ने रास्ते में भेज दिया, चलो मैं जाओ। तो इसके लिए धन्यवाद आपको कृष्ण को देना चाहिए। हाँ जी, पीछे माइक दे दीजिए तब तक। अच्छा, और समय कम है ना, तो अभी आखिरी एक दो प्रश्न है। हमने सुना है कि ईर्ष्या एक ही चीज है जो कि श्री कृष्ण के सेवा में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईर्ष्या भी हम भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं यदि हम अभक्तों के प्रति ईर्ष्या भावना रखें। तो कृपया इसकी व्याख्या कीजिए। हाँ, ईर्ष्या का मतलब ये नहीं है कि हमें उनसे जलना है। प्रभुपाद जी इस दृष्टि से कह रहे हैं ईर्ष्या में कि हमें उनके अवस्था को देखकर, उनके भोग तथा कथित सुख को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये कितनी अच्छी चीज कर रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि वो लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं, कैसे अज्ञान में पड़े हैं। इस तरह की भावना मन में आए तो हम उनके प्रति और उनके कार्यों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। इस दृष्टि से प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। हाँ, और अंतिम प्रश्न।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर लक्ष्य के लिए। मेरा प्रश्न ये है, पता नहीं मैं ठीक से कह पाऊंगी कि नहीं, कि मैंने हमेशा पढ़ा है, सुना है कि आत्मा सच्चिदानंद है, मन बुद्धि अहंकार ये भौतिक है। तो हम जब इस रिगार्डिंग कर्मा, तो जो हम कर्म करते हैं उनका हमें फल मिलता है। तो कर्म तो मन करता है, ये चाहिए वो चाहिए अच्छा बुरा, तो फिर हमारी आत्मा को उसका फल क्यों भोगना पड़ता है। और फिर हमने ये भी सुना है कि प्रकृति के तीन नियम सब कार्य करते हैं, मूल आत्मा समिति मैं करता हूँ। तो मेरे को ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि जब आत्मा कुछ करती ही नहीं है और एक भौतिक मन उसको नचा रहा है, तो इतना फिर उसको कर्म का फल क्यों मिलता है। और एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो व्यक्ति तीन गुणों से परे है जैसे आपने अभी बोला, उसके लक्षण क्या है।
आत्मा को भुगतना नहीं पड़ता है, ना आत्मा को सुख भुगतना पड़ता है संसार का, ना आत्मा को दुख भुगतना पड़ता है संसार का, मन ही भुगत रहा है। ये एक स्वप्न अवस्था है। जैसे सपने में हम कभी सोचते हैं कि एक शेर हमारा पीछा कर रहा है, तब तो हम सुखी नहीं होंगे ना। शेर से अपनी जान छुड़ाने के लिए हम बहुत तेजी से भागते हैं, भागते हैं भागते हैं, लेकिन डर बहुत लगता है, अभी आया अभी आया अभी आया पीछे से, और फिर पसीने पसीने होकर नींद खुल जाती है और फिर देखते हैं अरे कोई शेर नहीं, कुछ नहीं, चलो ठीक है। तो वो जो भय था, वो जो कष्ट था, दुख था, वो स्वप्न का दुख था। ठीक उसी तरह से कभी कभी हम सोच सकते हैं कि मैं राजा हूँ और बहुत ऐश कर रहा हूँ, बहुत ऐश्वर्य है मेरे पास में, इतना भोग है, और फिर नींद से जाग जाते हैं, अरे अब नौकरी में जाने हैं, अरे राजा नहीं कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसी तरह से ये दुनिया का सुख दुख ये भौतिक है, ये आत्मा को छूती नहीं है। आत्मा केवल अपने आप को भूल चुकी है, आत्मा स्वप्न देखती है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं कि मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं, उसी तरह से आत्मा का ये स्वप्न है, स्वप्न अवस्था है। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हम इस स्वप्न की अवस्था से जाग जाएं और कृष्ण भक्ति में पूर्णतया स्थित हो जाएं। ठीक है
महाराज, अगर होने से भी भक्ति तो हम बहुत तीव्रता से कर रहे हैं, लेकिन ये तो फैक्टर समझो, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है, तो मुझे महसूस तो होगी ना। आप बोलते आत्मा को नहीं होगी, लेकिन होती तो है ना।
अब देखिए, स्वप्न का जो दुख है वो महसूस नहीं होता, स्वप्न अवस्था में कितना महसूस होता है। हमारे आश्रम में एक बार एक ब्रह्मचारी रहा करते थे, हम लोग तब मंदिर में सोया करते थे, और उसको हमेशा रात में कोई समस्या थी, रात में कुछ भयानक सपने आ जाते थे और रात में जोर से चीखता था। बीच रात में हम लोग घबरा के उठे, क्या हुआ, कहाँ से आवाज़ आया, क्या हुआ, और कभी कभी समझ में नहीं आता था कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो रात को कभी कभी उठ के जाके बैठ जाए, कहाँ से कौन आवाज़ कर रहा है ये। तो वो भय जो होता है स्वप्न का, वो भी सच्चा भय होता है, क्योंकि वो जब देख रहा है, जो भी वो देख रहा होगा, वो भक्त उस समय इतना दर्द भयानक हुआ होगा कि वो चिल्लाने लगा था। केवल सपने में नहीं चिल्ला रहा था, वास्तव में भी चिल्लाने लगा अपने नींद में ही। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दुख नहीं हो रहा है, कि दुख नहीं है, है, परंतु इस ये क्षण भंगुर है, अब है कल नहीं है। हो सकता है थोड़े लंबे समय के लिए भी खींच लिया जाए, वैसे भी सुख भी है। तो जैसे दुख आएगा और चले जाएगा, सुख भी आएगा और चले जाएगा, परंतु कृष्ण भक्ति रहेगी, आत्मा रहेगा, कृष्ण रहेंगे। तो इसलिए जब हम इन क्षणिक अनुभवों से गुजरते हैं जिनसे हमें बहुत कष्ट होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इनको बिल्कुल नकारना चाहिए, या जिनको ऐसे कष्ट हो रहा है उनके प्रति हमें दया भावना या प्रेम भावना नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। परंतु ऐसे क्षणिक और अस्थाई अवस्थाओं में अपने दुख को भोगते समय हमको बहुत तीव्रता से उन चीज़ों का आश्रय लेना चाहिए जो शाश्वत हैं, जो स्थाई हैं, जो सत्य हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों को, ताकि श्री कृष्ण से हम कहें, संसार में आप जो चाहे सुख या दुख भेजिए कृष्ण, ये आएंगे जाएंगे, परंतु हम आपके चरण कमलों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यही सत्य है। हमारे अनेक जन्मों के कर्मों को हम भुगत रहे हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए इन चीजों को सहन करते करते अवश्य कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, तो इनको सहन करते करते हमें श्री कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण के आश्रय को और भी तीव्रता से ग्रहण करना चाहिए। यही हमारा एकमात्र उपाय है संसार में। संसार में दुख एक के बाद एक आते रहेंगे, एक दुख भी समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा खड़ा हो गया रास्ते, दरवाजे में लाइन खड़ी है आपन रांगे ताहत है ना, वो टेलीफोन में कभी ये कहते, बड़े कतार में खड़े हैं दुख हमारे जीवन में आने के लिए, कभी कभी दो दो तीन तीन एक साथ आ जाते हैं, ये संसार है, क्या करेंगे, संसार को तो बदल नहीं सकते, परंतु भगवान कृष्ण के शरण में जाके हम अपनी चेतना को ठीक कर सकते हैं, कि तूफान के बीच में रहते हुए भी हमें कृष्ण प्रेम की अवस्था में रहना है, प्रयास हमारे ये रहना चाहिए। एक भक्त बता रहे थे कि उनको एक ईमेल मिला था, मुझे भी उन्होंने वो ईमेल भेजा, कि जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, अर्थात बहुत कष्टदायक अवस्थाएं आती हैं, तो हम कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण देखिए हमारे तूफान कितने बड़े बड़े हैं। हम कृष्ण के पास जाकर शिकायत करते हैं, तो इसके बजाय कि हम कृष्ण के पास जाकर कहें कि देखिए हमारा तूफान कितना बड़ा है, हमें तूफान से जाके कहना चाहिए देखो कृष्ण हमारे कृष्ण कितने बड़े हैं, तो फिर वो तूफान चले जाएगा, कृष्ण से डर के वो चले जाएगा तूफान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी काफी समय बीत गया है, तो आज कथा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।